بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤں، اپنے آج کے کاریکرم کا آرمبھ ہم سورہ شمس کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں۔ تلاوت کا آشرے پراپت کیا ہے سورگی محمد صدیق منشاوی نے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والليل
صدق اللہ العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، سوگند ہے سوریہ کی اور اس کے پرکاش کی اور چندرما کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، اور دن کی جب وہ دھرتی کو پرکاشت کر دے، اور رات کی جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آکاش کی سوگند اور جس نے اسے اٹھایا، اور دھرتی کی اور جس نے اسے بچھایا، اور آتما کی اور جس نے اسے ٹھیک کیا، پھر اسے برائی اور بھلائی کا مارگ دکھا دیا، निश्चित रूप से वही सफल रहा जिसने अपनी अंतरात्मा को पवित्र बना लिया, और दुर्भाग्य हुआ जिसने उसे पापों से दूषित कर लिया। समूद जाति ने अपनी उद्दंडता के कारण पैगंबर को झुटलाया। जब उनमें का सबसे बड़ा दुर्भागी उठ खड़ा हुआ तो अल्लाह के पैगंबर ने उनसे कहा, अल्लाह की ऊंटनी और उसके पानी पीने के स्थान का ध्यान रखना। किंतु उन्होंने उसे झुटला दिया और उस ऊंटनी की हत्या कर दी, तो उनके पालनहार ने उनके पाप के कारण उन्हें दंडित किया और उन्हें तथा उनकी बस्ती को मिट्टी में मिलाकर बराबर कर दिया, और उसे इस दंड के परिणाम का कोई भय नहीं।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, मैं हूं अहमद अब्बास, मेरा सलाम स्वीकार कीजिए। हमारा प्रसारण आप शॉर्टवेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। हमारा ईमेल एड्रेस हिंदी hindi@dwsir.ib.ir। हमारी वेबसाइट है parstoday.com/hi। व्हाट्सएप पर हमारा संपर्क नंबर है 0098-9035065492। श्रोताओं, आज रविवार है, उर्दिवेश की 25, शव्वाल की 13 और मई की 15 तारीख। इस समय की सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा नोट कर लीजिए। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचार प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसके बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम अनमोल बातें, और फिर हम आपको सुनाएंगे कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा। राजनीतिक चर्चा के बाद श्रोताओं, आपकी सभा में प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार, और सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा नकबा दिवस पर विशेष कार्यक्रम। तो ये है कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। लीजिए श्रोताओं, अब मरियम मेहरदादी और अहमद अब्बास से सुनिए विश्व समाचार।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। मुख्य परमाणु वार्ताकार ने कहा है कि ईरान की रणनीति पाबंदियों को बेअसर बनाने की है। नकबा दिवस पर अनेक देशों में प्रदर्शन हुए और इसराइल के जघन्य अपराधों की निंदा की गई। इसराइली अखबार ने खुलासा किया है कि इसराइली सैनिक ने 190 मीटर की दूरी से फिलिस्तीनी पत्रकार शिरीन अबू अकेला को गोली मारी थी। भारत में कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा निकालने का ऐलान किया है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश उपमंत्री और मुख्य परमाणु वार्ताकार अली बाकरी ने कहा कि ईरान की रणनीति पाबंदियों को बेअसर बनाने की है। परमाणु वार्ताकार अली बाकरी ने तेल, गैस और पेट्रोलियम की प्रदर्शनी का मुआयना करते हुए कहा कि दुश्मन ईरान के बहुआयामी विकास को रोक देना चाहता था, लेकिन हमने उसकी कोशिशों को नाकाम बना दिया। ईरान पर लगी पाबंदियों को हटवाने के उद्देश्य से गत वर्ष 27 दिसंबर से ईरान और पश्चिमी देशों के बीच आठवें दौर की वार्ता शुरू हुई थी, जो 11 मार्च 2022 को यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल के सुझाव पर रुकी है और वार्ताकार अपनी अपनी राजधानियों में लौटे हैं। उस समय के बाद से अब तक दोनों पक्षों की ओर से कहा जा रहा है कि वार्ता में प्रगति हुई है। अली बाकरी ने कहा कि अब तो पश्चिमी देशों की पाबंदियों का सामना करने वाले दूसरे देश भी ईरान से पाबंदियों को नाकाम बनाने की तकनीक सीख रहे हैं। ईरान के परमाणु वार्ताकार ने कहा कि पाबंदियों को नाकाम बनाने की योजना की सफलता ही पाबंदियों को हटवा सकती है।
नकबा डे की 74वीं बरसी पर यूरोप के विभिन्न देशों की राजधानियों में जनता ने सड़कों पर निकलकर इसराइल के अवैध कब्जे और शहीद फिलिस्तीनी पत्रकार की हत्या की निंदा की। 14 मई 1948 को 7 लाख से अधिक फिलिस्तीनियों को उनके घरों से जबरदस्ती निकाला गया और वहां गैर कानूनी इसराइल को अस्तित्व दिया गया। इस दर्दनाक घटना की याद नकबाडे के रूप में मनाई जाती है। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के अनुसार नकबाडे के अवसर पर शनिवार को लंदन में आयोजित रैली में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने भाग लिया।
लेबनान में महत्वपूर्ण संसदीय चुनाव जारी है। संसद की 128 सीटों के लिए उम्मीदवारों के बीच जोरदार मुकाबला है।
15 مئی 2022 کو صبح سے لبنانی متداتاؤں نے ووٹنگ شروع کی۔ لبنان میں سنسد کا ایک ٹرم 4 سال کا ہے۔ لبنان میں 21 سال اور اس سے ادھک عمر کے ناگرکوں کو متادھکار حاصل ہے۔ متداتاؤں کی سنکھیا 39,67,507 ہے۔ اس سے پہلے 6 اور 8 مئی کو ودیشوں میں رہنے والے لبنانیوں نے متدان کیا تھا اور ٹرن آؤٹ 60% رہا تھا۔ 15 مئی کے متدان کے لیے دیش بھر میں 80,000 سینکوں کو تعینات کیا گیا ہے۔ گرہ منتری نے کہا کہ سرکشا کے پختہ انتظام کیے گئے ہیں۔ چناؤں کے پریناموں کی فوراً گھوشنا کی جائے گی۔ بسا مولوی نے کہا کہ متدان ایک ادھیکار اور کرتویہ ہے۔ لبنان کے ہتوں کے لیے ہم سب سے اپیل کرتے ہیں کہ چناؤں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔
بھارت میں کانگریس پارٹی کا چنتن شبیر چل رہا ہے، جس میں پارٹی کو پناہ مضبوطی سے کھڑا کرنے کے اپایوں پر سگن چرچا جاری ہے۔ ادے پور میں جاری چنتن شبیر میں کانگریس نیتا سونیا گاندھی نے اعلان کیا کہ پارٹی کی طرف سے کشمیر سے کنیا کماری تک بھارت جوڑو یاترا کی شروعات کی جائے گی۔ راجستھان کے ادے پور میں چل رہے کانگریس کے چنتن شبیر کو سمبودھت کرتے ہوئے کانگریس نیتا سونیا گاندھی نے اعلان کیا کہ ہم 2 اکتوبر سے گاندھی جینتی کے دن راشٹریہ کنیا کماری ٹو کشمیر بھارت جوڑو یاترا شروع کریں گے۔ سبھی یوا اور سبھی نیتا اس یاترا میں حصہ لیں گے۔ سونیا گاندھی نے 3 بار زور دے کر کہا کہ ہم جیتیں گے، ہم جیتیں گے، ہم جیتیں گے، یہی ہمارا سنکلپ ہے، یہی ہمارا سنکلپ ہے۔ سونیا گاندھی نے کہا کہ اس ستر کے انتم دن مجھے لگا کہ میں نے اپنے پریوار کے ساتھ ایک شام بتائی ہے۔ بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے راہل گاندھی نے اپنے سمبودھن میں کیندر کی مودی سرکار پر جم کر حملہ بولا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ذمہ داری وچاردھارا کو بچانے کی ہے، ہمیں جنتا کے پاس جانا پڑے گا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ہمیں بنا سوچے جنتا کے بیچ جا کر بیٹھ جانا چاہیے، جو ان کی سمسیا ہے اسے سمجھنا چاہیے۔ ہمارا جنتا کے ساتھ جو کنیکشن تھا اس کنیکشن کو پھر سے بنانا پڑے گا۔
بھارت میں راجیہ اتر پردیش کے بعد اب مدھیہ پردیش میں بھی مدرسوں میں راشٹر گان گائن انیوارے کیے جانے کی سمبھاونا جتائی جا رہی ہے۔ مدھیہ پردیش کے گرہ منتری نروترم مشرا نے کہا کہ ان کے راجیہ میں بھی اسی طرح کے قدم پر وچار کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے راجدھانی بھوپال میں پترکاروں دوارا پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں یہ بات کہی۔ مدھیہ پردیش بھاجپا پرمکھ وشنو دت شرما نے کہا کہ دیش بھر کے سبھی شیکشنک سنستھانوں میں راشٹر گان کا پاٹھ کیا جانا چاہیے۔ اتر پردیش کے سبھی مدرسوں میں پچھلے 12 مئی سے راشٹر گان جن گن من کا گائن انیوارے کر دیا گیا ہے۔
طالبان نے اسکینی گل ڈرون ویمان کی مرمت کر کے اسے دوبارہ اڑایا۔ اس ویمان کو امریکہ نے نصب کر دیا تھا۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے انوسار طالبان کا کہنا ہے کہ اس نے امریکہ اسکین ایگل ڈرون ویمان کی مرمت کی، جسے پہلے امریکیوں نے تباہ کر دیا تھا۔ بوئنگ کمپنی کا اسکین ایگل ڈرون ویمان 20 گھنٹے تک اڑان بھرنے کی کھمتا رکھتا ہے اور آدھونک الیکٹرو آپٹیکل کینسر کیمروں سے لیس ہے۔
شری لنکا کے پورو پردھان منتری مہندا راج پکشے کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ایک طرف جہاں کورٹ نے ان کے دیش چھوڑنے پر روک لگا دی ہے، وہیں دوسری طرف ایک وکیل نے عدالت سے مانگ کی ہے کہ وہ سی آئی ڈی کو نردیش دے کہ پورو پردھان منتری سہت 7 لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے۔ ادھیوکتا نے اپرادھک دھمکی دینے اور شانتی پورن ویروھ پر حملے کے لیے اکسانے کی سازش کا آروپ لگایا ہے۔ ڈیلی میرر کے انوسار کولمبو مجسٹریٹ کی عدالت میں ایک وکیل دوارا ویکتیگت شکایت درج کر گرفتاری کے لیے سی آئی ڈی کو نردیش دینے کا انوروھ کیا گیا۔ یاترا کے ہنسک جھڑپوں کے دوران گالے میں ویروھ استھل پر 100 سے ادھک پردرشنکاری گھائل ہو گئے تھے۔ اس کے بعد دیش میں سارجنک سمپتی کو لوٹنے یا ویکتیگت نقصان پہنچانے والے سبھی لوگوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا آدیش دیا گیا تھا۔ حال ہی میں شری لنکا کے پردھان منتری پد سے استعفی دینے والے مہندا راج پکشے کو ایک استھانی عدالت نے دیش چھوڑنے پر روک لگا دی ہے۔
روس اور یوکرین کے بیچ جاری لڑائی میں لگاتار نقصان ہو رہا ہے۔ روس کے بیلگورڈ علاقے کے شاسک جلاتکوف نے کہا ہے کہ رویوار کی صبح یوکرین کی فورسز نے حملہ کر دیا، جس میں سیما کے قریب ست روسی گاؤں میں ایک ویکتی گھائل ہوا۔ اسی بیچ یوکرین کے لیویو علاقے میں شاسک میکسیم کوزسکی نے کہا کہ پشچمی یوکرین میں ست اس علاقے کے انفراسٹرکچر پر میزائل حملہ ہوا، مگر اس سے ہونے والے نقصان کے بارے میں ابھی بیورا نہیں ملا ہے۔ اس بیچ روس نے پوروی یوکرین پر اپنا دباؤ بڑھا دیا ہے۔ یوکرین کے راشٹرپتی زیلنسکی نے کہا ہے کہ ڈونباس میں حالات بہت گمبھیر ہیں، یہاں روسی سینا کی جیت حاصل کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے۔ مگر ہم قبضہ کرنے والی سیناؤں کو باہر نکلنے پر مجبور کر دیں گے۔
फिनलैंड के राष्ट्रपति सोली निनिस्सो ने रविवार को ऐलान कर दिया है कि उनका देश बहुत जल्द नेटो में शामिल होने का आवेदन करेगा। उधर स्वीडन में भी सत्ताधारी पार्टी की इसी मुद्दे पर बैठक हो रही है। अगर सहमति बन जाती है तो स्वीडन भी नेटो में शामिल होने का आवेदन कर सकता है। दोनों देशों को रूस ने चेतावनी दी थी कि वे नेटो में शामिल होने का हरगिज फैसला न करें। यूक्रेन युद्ध में भी नेटो की सदस्यता का मुद्दा एक बड़ी वजह है। नेटो की कोशिश है कि रूस की सीमा के करीब स्थित देशों को सदस्यता देकर रूस की घेराबंदी करे। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने कहा कि आज इस बात पर सहमति हो गई है कि नेटो में सदस्यता के लिए आवेदन कर दिया जाए। ये ऐतिहासिक दिन और नए युग की शुरुआत है। सोमवार को इस फैसले का जायजा लेने के लिए फिनलैंड की संसद की बैठक होगी और आशा की जा रही है कि संसद के 200 सदस्य बहुमत से इस फैसले को पास कर देंगे। फिनलैंड के साथ लंबी संयुक्त जमीनी सीमा रखने वाले रूस ने कहा था कि अगर फिनलैंड ने नेटो में शामिल होने का फैसला किया तो ये बहुत बड़ी गलती होगी, इससे पारंपरिक और पारस्परिक संबंधों को नुकसान पहुंचेगा। फिनलैंड का ये ऐलान उस समय किया गया है जब बर्लिन में नेटो के विदेश मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक हो रही है, जिसमें फिनलैंड और स्वीडन के विदेश मंत्री भी शामिल हैं।
न्यूयॉर्क के बेफेलो स्थित एक सुपरमार्केट में शनिवार को दोपहर के समय 10 लोगों को गोली मार दी गई। पुलिस ने कहा कि बंदूकधारी को हिरासत में ले लिया गया है। टॉप फेडरल मार्केट में हुई गोलाबारी की चपेट में आए लोगों के बारे में फिलहाल जानकारी नहीं मिली है। गवर्नर कैथी होचुल ने ट्वीट किया कि वो उनके गृहनगर बफेलो में एक किनारे की दुकान पर हुई इस घटना को लेकर अधिकारियों के संपर्क में हैं। पुलिस के मुताबिक गोलीबारी से पहले हमलावर ने इस घटना को ऑनलाइन दिखाने के लिए कैमरे का इस्तेमाल किया। फिलहाल पुलिस ने 18 साल के इस हमलावर को हिरासत में ले लिया है, हालांकि अभी इसका नाम नहीं बताया गया है। जिस इलाके में ये गोलीबारी की घटना हुई है वहां ज्यादातर अश्वेत रहते हैं, अधिकांश पीड़ित अश्वेत ही हैं। बफेलो के पुलिस कमिश्नर कैमरा क्लिया ने कहा है कि 13 लोगों को गोली मारी गई, इनमें से 10 की मौत हो गई, बाकी लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भेजा जा चुका है। और इसी के साथ रेडियो तेरान से समाचार समाप्त हुए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है।
अनमोल बातें।
दोस्तों, कार्यक्रम अनमोल बातें लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज हम सुप्रीम लीडर की नज़र में फिलिस्तीनी जनता की स्थिति और दाइश के गठन में अमेरिका की नीति क्या थी, इस विषय पर चर्चा करेंगे। अख्तर अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए। इस्लामिक क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाही उज़्मा सैयद अली खामेनेई कहते हैं कि तथाकथित संयुक्त राष्ट्र संघ अपने दायित्वों पर अमल नहीं कर रहा है। तथाकथित मानवाधिकार संस्थाएं दम तोड़ गई हैं। आज पूरी दुनिया में बड़ी संख्या में लोग कोरोना की भेंट चढ़ गए, लेकिन आज कोई ये नहीं पूछता और न पूछेगा कि उन देशों में शहीद बंदी और लापता होने वाले हजारों लोगों का हत्यारा और जिम्मेदार कौन है, जहां अमरीका और यूरोप ने युद्ध की आग भड़काई है। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाही उज़्मा सैयद अली खामेनेई कहते हैं कि यद्यपि इस संघर्ष में हर संभावना और हर चीज से लाभ उठाना वैध है, वैश्विक समर्थन सहित सभी चीज से लेकर निश्चित रूप से पश्चिमी सरकारों पर भरोसा और विश्व समुदाय के बाहरी और आंतरिक रूप पर निर्भर होने से बचना चाहिए, इन लोगों को इस्लाम की हर
चीज के प्रभावी होने का विरोध है। ये लोग इंसानों और राष्ट्रों के अधिकारों की फिक्र ही नहीं करते, ये लोग खुद ही मुसलमानों पर होने वाले अपराधों और उनको पहुंचने वाले नुकसानों के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। आज तक कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था या कौन सी ताकत कुछ इस्लामी और अरब देशों में हुई हत्याओं, नरसंहारों, युद्ध की आग भड़काने, बमबारियों और गढ़े हुए सूखेपन का जवाब दे है? सुप्रीम लीडर कहते हैं कि आज दुनिया एक एक करके कोरोना की बलि चढ़ने वालों की गिनती कर रही है, लेकिन आज कोई ये नहीं पूछता और न पूछेगा कि उन देशों में शहीद, बंदी और लापता होने वाले हजारों लोगों का हत्यारा और जिम्मेदार कौन है, जहां अमेरिका और यूरोप ने युद्ध की आग भड़काई है। अफगानिस्तान, यमन, लीबिया, इराक, सीरिया और अन्य देशों में बहने वाले इन सभी नाहक खून का जिम्मेदार कौन है? फिलिस्तीन में होने वाले ये सब अत्याचारों, अपराधों, अतिग्रहण और तबाहियों व बर्बादियों का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि किसी ने इस्लामी जगत के इन लाखों बच्चों, महिलाओं और पुरुषों की गिनती क्यों नहीं की? क्यों किसी ने मुसलमानों के जनसंहार पर सांत्वना नहीं दी? क्यों लाखों फिलिस्तीनी 70 सालों से अपने घरों और अपने देश से दूर जिंदगी गुजारें? क्यों मुसलमानों के पहले क़िबले बैतुल मुक़द्दस का अपमान किया जाए? तथाकथित संयुक्त राष्ट्र संघ अपने दायित्वों पर अमल नहीं कर रहा है? तथाकथित मानवाधिकार संस्थाएं दम तोड़ गई हैं? बच्चों और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के नारे में फिलिस्तीन और यमन के मजदूर बच्चे और महिलाएं क्यों शामिल नहीं होती? ये सब पश्चिम की अत्याचारी शक्तियों और उसकी पिट्ठू अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का किया धरा है। दोस्तों, सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अलुज़्मा सैयद अली खामेनेई प्रतिरोध के मोर्चों को झड़पों में उलझाने की अमरीका और ज़ायोनियों की योजनाओं की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि क्षेत्रीय देशों में युद्ध की आग भड़काना और जनसंहार का बाजार गर्म करना प्रतिरोध के मोर्चे को उलझाना और इसराइल को मौका देने का हथकंडा है। सुप्रीम लीडर कहते हैं कि महत्वपूर्ण बिंदु जो इस्लामी जगत के सैन्य और राजनीतिक विशेषज्ञों की नज़र से ओझल नहीं होना चाहिए, वो प्रतिरोध के मोर्चे को झड़पों में उलझाने की अमेरिका और इसराइल की नीति है। इसराइल में गृह युद्ध भड़काना, यमन में रोजाना का जनसंहार और सैन्य घराव, हत्या और तबाही, इराक में दाइश का गठन, कुछ दूसरे क्षेत्रीय देशों में इसी से मिलता जुलता माहौल पैदा करना, ये सब हथकंडे प्रतिरोध के मोर्चे को व्यस्त करने और ज़ायोनी शासन को अवसर देने के लिए है। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्ला अलुज़्मा सैयद अली खामेनेई कहते हैं कि मुस्लिम देशों के कुछ राजनेता अनजाने में, जबकि कुछ जानबूझकर दुश्मनों के इन हथकंडों की सेवा कर रहे हैं। इस शैतानी नीति को लागू होने से रोकने का रास्ता सामान्य रूप से इस्लामी जगत के गैरतमंद युवाओं की गंभीर मांग है। सारे इस्लामी देशों, विशेषकर अरब देशों के युवाओं को महान इमाम खुमैनी की अनुशंसा की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, जिसमें वो कहते हैं जितना भी विरोध है वो अमरीका पर दिखाएं और इसी के साथ इसराइली दुश्मन के विरुद्ध भी नारे लगाएं। दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, हमें इजाजत दीजिए।
یہ تہران ہے اسلامی گنتنت ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
दोस्तों, राजनीतिक चर्चा का कार्यक्रम लेकर आपकी सेवा में हाजिर है कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। नकबा दिवस की 74वीं बरसी یو اے ای کے نئے شاسک کا چین اور بھارت نیانتیت کشمیر کی استھتی جیسے وشیوں کو آج ہم کارکرم میں شامل کریں گے۔ نکبہ دیوس پر آیوجت ریلی میں فلسطینی پترکار شیرین عاقلہ کی ہتیا کی نندا کی گئی۔ اس سمبندھ میں وستار سے بتا رہے ہیں ساتھی محمد مہدی۔
نکبہ ڈے کی 74ویں برسی پر یورپ کے وبھن دیشوں کی راجدھانیوں میں جنتا نے سڑکوں پر نکل کر اسرائیل کے اویدھ قبضے اور شہید فلسطینی پترکار کی ہتیا کی نندا کی۔ زرنی شاسن نے طاقت کے بل پر 14 مئی 1948 کو 8 لاکھ سے ادھک فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے زبردستی نکال دیا تھا اور غیر قانونی اور طاقت کے بل پر نکالے گئے فلسطینیوں کی زمینوں پر اویدھ زانی شاسن کے استتو کی گھوشنا کی۔ اس ہردے ودارک گھٹنا کی یاد نکبہ ڈے کے روپ میں منائی جاتی ہے۔ شنیوار کو لندن میں نکبہ ڈے کے اوسر پر نکالی جانے والی ریلی میں سماج کے وبھن ورگوں کے لوگوں نے بھاگ لیا۔ پردرشنکاریوں کے ہاتھوں میں فلسطینی جھنڈا تھا اور وہ اسرائیلی سینکوں کے ہاتھوں فلسطینیوں پر جاری اتیاچار پر اپنا آکروش ویکت کر رہے تھے۔ ریلی میں لوگوں نے فلسطینی پترکار شیرین ابو عاقلہ کی اسرائیل کے آتنکوادی سینکوں کے ہاتھوں ہتیا کی نندا کی۔ فلسطینی مول کی الجزیرہ ٹی وی چینل کی رپورٹر شیرین ابو عاقلہ کو زانی سینکوں نے اس سمے گولی ماری جب وہ ویسٹ بینک کے جنین شیویر پر اسرائیلی آتنکوادیوں کے حملوں کی رپورٹنگ کر رہی تھی۔ یہی نہیں، زانی سینکوں نے ان فلسطینیوں پر بھی حملہ کیا جو شیرین ابو عاقلہ کی شو یاترا میں شامل تھے اور انہیں دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ منوادھکاروں کی رکشا کا دعویٰ کرنے والے پوری طرح ارتھ پورن چپی سادھے ہوئے ہیں اور زانی سینکوں کے آتنکوادی کرتیوں کی بھرتنا تک نہیں کر رہے ہیں۔ منوادھکار کے سمرتھن کا راگ الاپنے والوں سے پوچھا جانا چاہیے کہ جب فلسطینی مہیلا پترکار شیرین ابو عاقلہ کو دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تب آتنکوادی زانی سینکوں نے ان پر کیوں حملہ کیا تھا؟ اس پر وہ چپ کیوں ہیں؟ کیا کسی پترکار پر حملہ کرنا انتراشٹری قانون کا کھلا الگھن نہیں ہے، وہ بھی جب پترکار مہیلا ہو؟ کیا ارتھ پورن چپی اسرائیل اور اس کے اپرادھوں کا کھلا سمرتھن نہیں ہے؟ بہرحال نکبہ ڈے پر فرانس کی راجدھانی پیرس میں بھی پردرشن ہوئے جس میں لوگوں نے فلسطینیوں کے خلاف دشکوں سے جاری اسرائیل کے اپرادھوں کو ختم کیے جانے کی مانگ کی۔ آسٹریا کی راجدھانی وینا میں بھی ہزاروں کی سنکھیا میں پردرشنکاری سڑکوں پر نکلے اور انہوں نے نکبہ ڈے کی 74ویں برسی پر آیوجت ریلی میں بھاگ لیا۔ انہوں نے بھی اسرائیل کے آتنکوادی سینکوں کے ہاتھوں فلسطینی پترکار شیرین ابو عاقلہ کی ہتیا کی نندا کی۔ 74 ورشوں سے ادھک کے سمے سے فلسطین کی مظلوم جنتا کے خلاف اسرائیل کی اتیاچار یتھاوت جاری ہیں اور اسرائیل فلسطینیوں کی 85% سے ادھک زمینوں پر قبضہ کر چکا ہے جو لگ بھگ 27,000 ورگ کلومیٹر ہے۔ گت 74 ورشوں کے دوران زانوی شاسن فلسطین کے اندر اور باہر 1 لاکھ سے ادھک فلسطینیوں کو شہید کر چکا ہے۔ بہرحال مظلوم فلسطینی اپنے ادھکاروں کی پراپتی کے لیے سنگھرش کر رہے ہیں اور موجودہ حالات اس بات کے سوچک ہیں کہ زانوی شاسن دن پرتی دن اپنے انت سے نکٹ ہوتا جا رہا ہے اور وہ دن ادھک دور نہیں ہے جب مظلوم فلسطینی زانوی شاسن کے سرکاری آتنکواد سے مکتی پا جائیں گے اور مسلمانوں کا پہلا قبلہ آزاد ہو جائے گا۔
اور اب ایک انیہ وشے۔ محمد بن زائد آل نہیان کو یو اے ای کا نیا شاسک نیوکت کیا گیا ہے۔ ایک سمیکشا لے کر اپستھت ہیں اختر عباس۔
سنیکت عرب امارات کے شاسک شیخ خلیفہ بن زائد آل نہیان کا 73 वर्ष की आयु में शुक्रवार को निधन हो गया। इमारात 1971 में स्वतंत्र हुआ और पिछले 51 साल में इस देश के केवल दो शासक हुए, जायद बिन सुल्तान अल नहयान इमारात की स्वाधीनता के बाद पहले राष्ट्रपति थे और 2004 में खलीफा बिन जायद अल नहयान ने उनका पदभार संभाला। यद्यपि खलीफा अभी तक इमारात के शासक नहीं थे, लेकिन 10 साल तक वो इमारात की सत्ता पर जमे रहे, क्योंकि उन्हें 2004 में ब्रेन हैमरेज हो गया था और उसके बाद वो फारस की खाड़ी में अपनी देश की भूमिका अदा करने में सक्षम नहीं रहे। 1948 में जन्मे शेख खलीफा यूएई के दूसरे शासक थे। वो शेख जायद के सबसे बड़े बेटे थे। शेख खलीफा ने अपने कार्यकाल में यूएई और अबू धाबी के प्रशासन को पुनर्गठित करने में अहम भूमिका अदा की थी। यही वजह है कि खलीफा बिन जायद के छोटे भाई मोहम्मद बिन जायद को देश की सत्ता सौंप दी गई, जो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस थे। सरकार की ओर से जायद अल नहयान के निधन पर 40 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। इसके अलावा देश के सभी निजी और सरकारी सेक्टर्स में 3 दिनों के लिए अवकाश घोषित किया गया। दुबई मीडिया ऑफिस की ओर से राष्ट्रीय शोक के ऐलान की जानकारी दी गई। खलीफा बिन जायद यूएई के संस्थापक जायद बिन सुल्तान अल नहयान के सबसे बड़े बेटे थे, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद यूएई के शासक बने। यूएई की स्थापना के बाद से खलीफा बिन जायद इस देश के 16वें शासक थे। संयुक्त राज्य इमारात की स्थापना 2 दिसंबर 1971 को हुई थी। खलीफा बिन जायद की मौत से अबू धाबी में सुप्रीम अलायंस काउंसिल का गठन हुआ और 61 वर्षीय मोहम्मद बिन जायद को आधिकारिक रूप से नया शासक बना दिया गया। खलीफा की मौत की वजह से इमारात के क्राउन प्रिंस का पद खाली हो गया और इस बात के दृष्टिगत कि मोहम्मद बिन जायद पूर्व शासक के सौतेले भाई थे, ऐसा लगता है कि क्राउन प्रिंस का पद भी मोहम्मद बिन जायद को ही मिलेगा।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
और श्रोताओं, अब रुख करते हैं हम भारत का। कश्मीरी दलों का ये कहना है कि वहां पर शांति के बारे में केंद्र सरकार के दावे निराधार हैं। श्रीनगर से सिप्ते मोहम्मद हसन की रिपोर्ट।
भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर के मेन स्ट्रीम दलों के गठबंधन गुपकार अलायंस ने कहा है कि जो हाल ही दिनों में घटनाएं घटी हैं, जिसमें एक पंडित सहित 2 व्यक्ति अज्ञात बंदूकधारियों के हाथों हताहत हुए हैं, उससे ये बात सिद्ध हो गई है कि जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य नहीं है। उन्होंने नई दिल्ली पर आरोप लगाया कि वो बार बार ये दावा कर रही है कि जम्मू कश्मीर में सामान्य पोजीशन है और यहां पर शांति स्थापित हो चुकी है और वो पर्यटकों का कश्मीर आना इसका बहुत बड़ा उदाहरण देते हैं। परंतु हम उन्हें बताना चाहते हैं जो घटनाएं घटी हैं, उससे ये बात अब सिद्ध हो गई है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ सामान्य नहीं है। उन्होंने कहा कि एक तरफ पंडित कम्युनिटी को ये आश्वासन दिया गया कि उन्हें सुरक्षा दी जाएगी, परंतु अब जो उनकी हत्या हो रही है, इस पर कोई उत्तर नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने इन हत्याओं पर काफी निंदा भी प्रकट की और कहा कि हम इस हवाले से जम्मू कश्मीर यूटी के LG से भी मिलने जा रहे हैं। इस अवसर पर बैठक के बाद गुपकार अलायंस के प्रवक्ता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा,
ऑल ऑफ यू नो यस्टरडे वी मेट टुगेदर एंड अ डेप्यूटेशन फ्रॉम कश्मीरी पंडित्स मेट अस They insisted that we must convey concerns of the Kashmiri Pandit employees, non-migrant families to the governor, to the LG sahab. And it is in that context that we decided to meet LG sahab.
Is bhi Jammu Kashmir mein hinsak ghatnaon ka kram bhi jari hai. Uttari Kashmir ke Bandipora mein Bharatiya Suraksha Balon aur Algaanvadi Chhapamaron ke beech ek mudbhed mein do Algaanvadi Chhapamar hataat hue hain, jinke niyantran se asla aur gola barood baramad karne ka dawa kiya gaya. IGP Kashmir ne dawa kiya hai ki unhone Algaanvadi Chhapamaron ke virudh mein jo operation aarambh kiya hai wo safaltapurvak jari hai. Parantu aaye divas agarche ye daave kiye ja rahe hain, zameeni star par aisa dikh raha hai ki hinsak ghatnaon mein koi kami nazar nahi aa rahi hai. सिप्त मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, अभी आप राजनीतिक चर्चा सुन रहे थे। इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवश्य अवगत करवाइए। आज नकबा दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम हम पेश करेंगे, किंतु उससे पहले प्रस्तुत है कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार।
कुरान ईश्वरीय चमत्कार।
प्रिय श्रोताओं, कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार की एक अन्य कड़ी लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा है पसंद करेंगे। आइए पहले सूरह ताहा की 43वीं और 44वीं आयतों की तिलावत सुने।
اذهبا الى فرعون انه طغى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى
हे मूसा, तुम और हारून दोनों फिरौन के पास जाओ कि निश्चित रूप से वो उद्दंडी हो गया है, और तुम दोनों उससे बड़े नर्म स्वर में बात करो कि शायद वो ध्यान दे और स्वीकार कर ले, या डर जाए और उद्दंडता न करे।
इससे पहले हमने कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हज़रत हारून का पहला अभियान फिरौन को एक ईश्वरवाद स्वीकार करने और बनी इसराइल पर हो रहे अत्याचारों को समाप्त करने का निमंत्रण देना था। जिस व्यवस्था में फिरौन ही हर वस्तु का स्वामी हो, उसमें किसी भी प्रकार का सुधार कार्यक्रम स्वयं उसी से आरम्भ होना चाहिए, क्योंकि वही सभी समस्याओं का मुख्य कारण है। और निचले स्तर पर की जाने वाली कोई भी कार्रवाई या तो विफल रहेगी या उसका बहुत कम प्रभाव होगा।
स्पष्ट है कि उपदेश और सुधार का निमंत्रण नर्म स्वर में होना चाहिए, ताकि सुनने वाले पर उसका प्रभाव हो, इस प्रकार से कि वो या तो तर्कसंगत बातों को स्वीकार करके उन पर ईमान ले आए, या कम से कम ईश्वरीय दंड के भय से अत्याचार करना समाप्त कर दे।
इन आयतों से हमने सीखा कि ईश्वरीय पैगंबर न केवल ये कि राजनीतिक व सामाजिक मामलों से दूर नहीं थे, बल्कि ईश्वर की ओर से उनका सर्वप्रथम अभियान समाज का सुधार और भलाई की शिक्षा देना रहा है। स्पष्ट है कि इस सुधार के प्रभाव आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मामलों सहित समाज में हर स्तर पर प्रकट होंगे।
कड़े और हिंसक व्यवहार व बातों से इस बात की आशा नहीं रखी जा सकती कि अन्य लोग हमारी सही बात को भी स्वीकार कर लेंगे।
आइए अब सूरह ताहा की आयत नंबर 45 और 46 की तिलावत सुने।
قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى
उन दोनों ने कहा, प्रभुवर, हमें इस बात का भय है कि वो हम पर अत्याचार करे या उद्दंडता करने लगे। ईश्वर ने कहा, डरो नहीं कि निश्चित रूप से मैं तुम दोनों के साथ हूँ, मैं सुनता भी हूँ और देखता भी हूँ।
निश्चित रूप से फिरौन के दरबार में जाना, वो भी उसे उपदेश और ईश्वर पर ईमान लाने का निमंत्रण देने के लिए अत्यंत खतरनाक काम था और इसका परिणाम कुछ भी हो सकता था। संभव था कि फिरौन उन्हें कुछ कहने और ईश्वरीय चमत्कार प्रस्तुत करने से पहले ही गिरफ्तार कर लेता और उन्हें कारावास में डालकर यातनाएं देता तथा बनी इसराइल पर अपने अत्याचारों में और भी वृद्धि कर देता। अतः हजरत मूसा व हारून अलैहिस्सलाम ने अपनी इस चिंता को, जो अत्यंत स्वाभाविक एवं तर्कसंगत थी, ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत किया और ईश्वर ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो पूर्ण रूप से उनके साथ है और उनका सहायक है और जो कुछ उनके तथा फिरौन के बीच होने वाला है उसे देखने व सुनने वाला है, अतः उन्हें चिंतित नहीं होना चाहिए।
इन आयतों से हमने सीखा कि कोई भी कार्य करने से पहले इस बात का अनुमान लगा लेना चाहिए कि उसका क्या परिणाम सामने आ सकता है और फिर बुरे परिणामों से बचने के लिए आवश्यक उपाय कर लेने चाहिए।
इस बात पर ईमान कि ईश्वर हर स्थान पर उपस्थित है और हर बात को देखता व सुनता है, कठिनाइयों व समस्याओं का मुकाबला करने में ईमान वालों की भावनाओं के सुदृढ़ होने का कारण है।
بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله
آئیے اب سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 47 اور 48 کی تلاوت سنیں۔
فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى۔
اتہ بنا بھے کے اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تیرے پالنہار کے پیغمبر ہیں، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں یاتنائیں نہ دے۔ نشچت روپ سے ہم تیرے پاس تیرے پالنہار کی نشانی لے کر آئے ہیں اور शांति है उसके लिए जो मार्गदर्शन को स्वीकार करके उसका अनुसरण करे। निश्चित रूप से हमारे पास ईश्वरीय संदेश आया है कि ईश्वरीय निशानियों को झुठलाने और उनकी ओर से मुंह फेरने वालों के लिए निश्चय ही कड़ा दंड है।
एक बार फिर ईश्वर ने फिरौन की ओर जाने का आदेश दिया और हजरत मूसा व हजरत हारून अलैहिस्सलाम को आदेश दिया और उन्हें जो बातें फिरौन से कहनी थी उन्हें फिर से समझा दिया। अभियान का सबसे पहला कदम बनी इसराइल को फिरौन तथा उसके लोगों के चंगुल से छुड़ाना है। दूसरा कदम ईश्वरीय आयतों और चमत्कारों को प्रोत्साहन और धमकी के साथ प्रस्तुत करना है। सत्य को स्वीकार करने की स्थिति में ईश्वरीय दया की प्राप्ति का प्रोत्साहन और सत्य को झुठलाने और उससे मुंह मोड़ने की स्थिति में ईश्वरीय कोप और दंड की धमकी।
रोचक बात यह है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पहली ही भेंट में वंचितों और अत्याचारग्रस्तों का समर्थन करना है और उन्हें फिरौन के चंगुल से छुड़ाने का उपाय करना है, जबकि परंपरागत रूप से उन्हें आरंभ में ये कहना है कि हम तेरे पालनहार के संदेशवाहक हैं ताकि तुझे कुफ्र और अनेक ईश्वरवाद से मुक्ति दिलाएं और तुझे एक ईश्वरवाद का निमंत्रण दे। ये लोगों के संबंध में धार्मिक नेताओं के गहरे दायित्वों का सूचक है। इस प्रकार से कि यदि फिरौन ईश्वर पर ईमान नहीं भी लाता तो कम से कम अत्याचार करना छोड़ दे और बनी इसराइल को दासता से मुक्त कर दे।
इन आयतों से हमने सीखा कि धर्म के प्रचार और उपदेश में सर्वप्रथम बड़े व प्रतिष्ठित लोगों को दृष्टिगत रखना चाहिए, क्योंकि समाज का सुधार उसके नेताओं के सुधार पर निर्भर होता है।
اتیاچاری شاسکوں سے مقابلہ اور لوگوں کی سوتنترتا پیغمبروں کے دائتوں میں سروپری ہے۔
ویکتی و سماج کی شانتی و سرکشا ایشوریہ شکشاؤں کو لاگو کرنے میں ہے، تتھا اس کے اترکت کسی بھی انی مارگ کا چین سنسار میں سنکٹوں و سمسیاؤں تتھا پرلوک میں ایشوریہ دنڈ و کوپ کا کارن بنے گا۔ یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ ریڈیو تہران سچائی اور ان سب کی آواز جن کی آواز کوئی نہیں سناتا۔ تازہ سماچاروں اور سٹیک سمیکشاؤں کے لیے ہم سے جڑیے اور ہمیشہ جڑے رہیے۔ اور اب ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کا اگلا کاریکرم۔
दोस्तों, नकबा डे के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम को लेकर उपस्थित हैं स्वाति और कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। इसराइल के अवैध अस्तित्व को 74 साल बीत गए हैं। इस दौरान ज़ायोनी शासन को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना रहा है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे।
दोस्तों, 15 मई फिलिस्तीनियों के लिए जहां नकबा या त्रासदी दिवस है, वहीं इसराइलियों के लिए अवैध ज़ायोनी शासन का स्थापना दिवस, जिसे वे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दिन ज़ायोनियों द्वारा फिलिस्तीनियों को उनके घरों से उजाड़ने और उनके जबरन पलायन का प्रतीक है। नकबा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है त्रासदी या तबाही। फिलिस्तीनी इस शब्द को उस स्थिति को बयान करने के लिए प्रयोग करते हैं जब ज़ायोनियों ने उनके घरों और फिलिस्तीनी इलाकों पर ज़बरदस्ती कब्जा करके उन्हें पलायन के लिए मजबूर कर दिया था। ये दिन फिलिस्तीनियों के लिए किसी कयामत से कम नहीं है। इस दिन 8 लाख फिलिस्तीनी शरणार्थियों के पहले जत्थे को उनके गाँवों और शहरों से बाहर निकाल दिया गया था।
पहले विश्व युद्ध में उस्मानिया सल्तनत की हार के बाद मध्य पूर्व में फिलिस्तीन के नाम से पहचाने जाने वाले क्षेत्र पर ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यूरोप से यहूदियों को खदेड़ दिया गया और बड़ी संख्या में उन्होंने फिलिस्तीन का रुख किया। 1947-48 में ज़ायोनी मिलिशियाओं ने फिलिस्तीनियों को निशाना बनाना शुरू किया और बड़े पैमाने पर उनका नरसंहार किया। फिलिस्तीन से ब्रिटेन के निकलने की घोषणा के बाद ज़ायोनी मिलिशियाओं ने अवैध ज़ायोनी शासन की स्थापना की घोषणा कर दी। इन आतंकवादी संगठनों ने लाखों फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान ज़ायोनियों ने 400 से ज्यादा फिलिस्तीनी गांवों, कस्बों और शहरों को खाली करवा लिया, जिसके बाद से मानव इतिहास में लंबे समय से जारी रिफ्यूजी संकट की शुरुआत हुई, जो आज भी जारी है।
حالیہ ورشوں میں امریکہ کے سمرتھن سے زائونی شاسن نے عرب اور پڑوسی دیشوں کے ساتھ سمبندھوں کو سامان्य بنانے کی بہت کوششیں کی ہیں، تاکہ وہ 74 سال کے راجنیتک الگاؤ سے باہر نکل سکیں اور اپنے اویدھ استتو کو مضبوطی پردان کر سکیں۔ इसराइल का ये भी प्रयास है कि फिलिस्तीन के मुद्दे को अरब और मुस्लिम देश अपनी प्राथमिकता से निकाल दें और इसे हाशिए पर डाल दिया जाए। तुर्की के साथ संबंधों की बहाली और अरब देशों के साथ संबंधों का सामान्यकरण इसी नीति का एक हिस्सा है।
इसके बावजूद इस तरह के प्रयासों से न केवल ज़ायोनी शासन सुरक्षित नहीं हुआ बल्कि फिलिस्तीनियों और ज़ायोनियों के बीच झड़पों में वृद्धि हो गई है। इन परिवर्तनों के बाद फिलिस्तीनी इस नतीजे पर पहुंचे कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए दूसरे देशों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। वास्तव में फिलिस्तीनी संयुक्त राष्ट्र समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से निराश हो चुके हैं और इसी तरह से वे अरब देशों से भी निराश हो चुके हैं। यही वजह है कि अवैध अधिकृत इलाकों में फिलिस्तीनी अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं और शहादत दे रहे हैं। इसीलिए इस साल नकबा दिवस इसराइल के लिए काफी महंगा साबित हो रहा है, जिससे ज़ायोनी शासन की कमजोरी भी जाहिर हो रही है।
व्यक्तिगत रूप से की जाने वाली फिलिस्तीनियों की ये कार्रवाइयाँ इसराइल के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर रही हैं। पिछले 5 महीनों में इस तरह की 5 कार्रवाइयाँ हुई हैं, जिनमें 18 ज़ायोनियों की मौत हो गई और दसियों अन्य घायल हो गए। हालिया हफ्तों में फिलिस्तीनियों की अधिकांश प्रतिरोधी कार्रवाइयाँ 1948 में कब्जा किए गए इलाकों में हुई, जिसने ज़ायोनी शासन को अंदर से झकझोर कर दिया है। 20 मार्च को नकब में रहने वाले फिलिस्तीनी युवक मोहम्मद अबुल कियान ने चाकू से हमला करके 4 इसराइलियों को मौत के घाट उतार दिया। 27 मार्च को आयमन अखबारिया और इब्राहिम अखबारिया ने अल खजरिया इलाके में फिलिस्तीन के 2 सीमावर्ती गार्डों को मार डाला। 19 मार्च को जनीन के जिया हमारशा नामक फिलिस्तीन ने बेनी बराक इलाके में 5 ज़ायोनियों की हत्या कर दी। 7 अप्रैल को तेल अवीव में जनीन के ही रहने वाले राद हाजिम ने 3 इसराइलियों को मौत के घाट उतार दिया। 29 अप्रैल को वेस्ट बैंक स्थित अवैध ज़ायोनी बस्ती एरियल में एक ज़ायोनी सैनिक को मौत के घाट उतार दिया गया। 5 मई को तेल अवीव के निकट अलआद ऑपरेशन में 3 इसराइली मारे गए और 10 अन्य घायल हो गए।
इन अभियानों से संबंधित कुछ बिंदु ध्यान योग्य हैं, जो 74वें नकबा दिवस के मद्देनजर अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। इन ऑपरेशनों में से 3 को उन अरबों ने अंजाम दिया है जो 1948 के अवैध अधिकृत इलाकों में रहते हैं। ज़ायोनी शासन की भेदभावपूर्ण नीतियां और अरबों पर ज़ायोनियों के अत्याचारों ने अवैध अधिकृत इलाकों में रहने वाले फिलिस्तीनियों को इन हमलों के लिए मजबूर कर दिया है। दूसरे शब्दों में ज़ायोनी शासन को भीतर से और अवैध अधिकृत इलाकों में रहने वाले नागरिकों की ही ओर से खतरा उत्पन्न हो गया है।
दूसरे ये कि ज़ायोनी शासन की खुफिया एजेंसियां इन अभियानों को रोकने में नाकाम रही हैं। इसराइली सुरक्षा एजेंसियां अभी तक अलआद ऑपरेशन को अंजाम देने वाले फिलिस्तीनी जियालों को गिरफ्तार नहीं कर पाई हैं। वास्तव में तेल अवीव के निकट स्थित अलआद इलाके में होने वाली ये कार्रवाई ज़ायोनी शासन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। ये कार्रवाई खुफिया एजेंसियों के लिए बड़ी हार है, जो न केवल इस कार्रवाई को रोक नहीं सकी बल्कि इसमें शामिल लोगों की जानकारी भी उपलब्ध नहीं करा सकी।
तीसरे ये कि इन कार्रवाइयों और विशेष रूप से अल आद की कार्रवाई ने इसराइल के तथाकथित स्वतंत्रता दिवस के जश्न को मातम में बदल दिया। इसराइली संसद में यमीना धड़े के प्रमुख नीर ओरबाग का कहना है कि जिस दिन पर हमें गर्व करना था उस दिन हमें बड़ा दर्द और दुख मिला। हमें अपनी पराजय को महसूस करना चाहिए।
चौथे ये कि इस तरह के अभियानों से कि जिन्हें रोकना बहुत ही मुश्किल है, ज़ायोनी समाज का चैन और अमन छिन गया है। اسرائیلی ودیش منتری کا یہ بھی ماننا ہے کہ ان حملوں سے زائونی سماج کا سکون چھن گیا اور وہ بھی ایک جھٹکے کے ساتھ۔ ان خطروں کو دیکھتے ہوئے اویدھ ادھیکرت علاقوں سے یہودیوں کا الٹا پلائن یا ریورس مائیگریشن شروع ہو چکا ہے۔ واستو میں زائونی شاسن کے اویدھ استتو میں شانتی اور سرکشا کا مدعا سب سے مہتوپورن ہے، خاص طور پر دوسرے دیشوں سے یہاں آ کر بسنے والے یہودیوں کے لیے۔ لیکن حالیہ ورشوں میں اسی مدعے پر سب سے زیادہ سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں اور اس کا رنگ اب پھیکا پڑتا جا رہا ہے۔
پانچویں یہ کہ ان ابھیانوں کے پرینام سوروپ فلسطینیوں کا ساہس بڑھا ہے اور انہیں اپنے ادھیکاروں کے لیے لڑنے کا پروتساہن ملا ہے۔ فلسطین کے پرتیرودھی گٹوں نے کئی بار یہ چیتاونی دی ہے کہ مسجد الاقصی ان کے لیے ریڈ لائن ہے اور اس پوتر استھل پر ہر پرکار کے حملے کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ کہا جا سکتا ہے کہ فلسطین میں گھٹنے والی حالیہ کچھ گھٹناؤں سے فلسطینیوں کے لیے ایک نئی آشا جگی ہے۔ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ فلسطینی مدعا بھلایا نہیں جا سکتا اور خود فلسطینی اسے اسلامی جگت کے کیندر میں زندہ رکھیں گے۔
اس کے علاوہ فلسطینیوں کی ویکتیگت کاروائیوں نے زائونی شاسن کے لیے کئی دوسری بڑی چنوتیاں پیش کر دی ہیں۔ کیتھولک دھرم گرو پوپ فرانسس اگلے مہینے اویدھ ادھیکرت علاقوں کی یاترا کرنے والے تھے، لیکن ان کھیتروں میں ہونے والی ان کاروائیوں نے اسرکشا کی بھاونا کو بڑھا دیا، جس کے بعد ان کی اس یاترا کے رد ہونے کی سمبھاونا بڑھ گئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اویدھ ادھیکرت علاقے اسرکشا کی سمسیا سے جوجھ رہے ہیں۔
اس کے علاوہ اویدھ ادھیکرت فلسطینی علاقوں میں فلسطینیوں کی ان کاروائیوں نے نفتالی بینت شاسن کو بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ یہ شاسن کئی ایسی دلوں کے گٹھ بندھن سے بنا ہے جن کے آپس میں گہرے مدبھید ہیں، اور اس سے کئی لوگوں کے باہر نکلنے سے یہ پتن کی کگار پر پہنچ گیا ہے۔ بینت شاسن کے نکٹ سوتروں کا کہنا ہے کہ یہ سرکار اگلے ایک مہینے میں گر سکتی ہے۔ اسرائیلی اخبار ماریو نے بھی بھوشیہ وانی کی ہے کہ بینت کیبینٹ سے تین منتری اپنے پد سے استعفی دے سکتے ہیں۔ اگر یہ سرکار گرتی ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ زائونی شاسن پھر سے ایک نئے راجنیتک گتیرود میں پھنس گیا ہے۔ تو دوستوں، اسی کے ساتھ آج کا کاریکرم یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔ ہمیں انومتی دیں۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ شروتاؤ، آپ نکبہ دیوس پر وشیش کاریکرم ہماری اس سمے کی سبھا سے سن رہے تھے۔ اسی کاریکرم کے ساتھ ہماری یہ سبھا بھی یہیں پر سمپن ہوتی ہے۔ اگلی ملاقات تک احمد عباس اور دوسرے سبھی ساتھیوں کو انومتی دیجیے۔ خدا حافظ۔Thank you.